चक्षुर् निहितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयिकं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिताश्चिक्षादान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। एकां सुतो मामन्त्रमतेर्गतिमन् सर्वस्वपदां भूतो राधामदनं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितदुद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नो विदुसरासुरगणा देवाय तस्मै। आजकल हम भरत महाराज का चरित्र का चर्चा कर रहे हैं, तो पिछले के श्लोकों में आया है किस प्रकार भरत महाराज हजारों वर्ष, लिखा गया है कि 1000 times 10,000 यानी 10,000 को हजार गुना करेंगे, जितना हम जितना संख्या होता है उतने साल तक उन्होंने राज्य को संभाला। उसके बाद दाय भाग, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को अपना संपत्ति देके अपना शरीर त्याग करता है या वानप्रस्थ या संन्यास स्वीकार करता है, वन में चले जाता है, तो वैसे ही भरत महाराज ने अपने पुत्रों को अपना राज्य पूरा सौंप दिया। सौंप के अभी वो पहुंचे, कहाँ पहुंचे, एक जगह है, उस जगह का नाम है पुलस्य क्षेत्र। पुला आश्रम, तो ये पुला आश्रम में गए। पुला आश्रम कहाँ है, हरिद्वार में ऐसा बोला जाता है, लेकिन अभी का जो हरिद्वार है वो एक सिटी के रूप में माना जाता है। ये पुला आश्रम में गंडकी नदी बह रहा है और गंडकी नदी में शालिग्राम शिला प्राप्त होता है, उन सब का पहले हम लोग वर्णन कर चुके हैं। कभी हरिद्वार में तो गंडकी नदी बहता तो नहीं है अभी, तो वो पूरा जो हिमालय का जो क्षेत्र है उन सबको एक प्रकार का हरिद्वार बोला जा सकता है, तो इसलिए वैसे तो उसके बारे में एक्सपर्ट लोग ही बता सकते हैं। वही सोच रहे थे कि पुला आश्रम अगर गंडकी नदी में है तो जब पहले तात्पर्य में अभी श्लोकों में भी आया है कि वो हरिद्वार के पास है, लेकिन ये गंडकी नदी कहीं नेपाल में है और हरिद्वार कहीं और है, दोनों अलग अलग जगह है। लेकिन एक करके बोला जाए तो ये पूरा जो हिमालय का जो प्रदेश है वो सब हरिद्वार के ही रूप में माना जा सकता है, इसके बारे में हम जान नहीं सकते। लेकिन आज का जो श्लोक है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर बहुत सारे शिक्षा हमको प्राप्त होता है। अगर कोई हरि भजन करना चाहता है वो कोई भी भौतिक स्थिति के ऊपर आधारित नहीं है, कहीं भी व्यक्ति भगवान भजन कर सकता है, लेकिन फिर भी सनातन गोस्वामी बात बताते हैं या श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी बात को पांच महासाधन के बारे में वर्णन करते हैं। वो पांच महासाधन में एक महासाधन है धाम वास या मथुरा वास, हरिनाम संकीर्तन भागवत पाठ, दूसरा है तीसरा है श्री विग्रह श्रद्धया सेवन और साधु संग, तो ये धामवास ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि धामवास भले ही जैसे रूप गोस्वामी बाद की शिक्षा में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये भक्तिलता बीज को उगाने के लिए केवल उनको श्रवण कीर्तन करना है, और श्रवण कीर्तन करने से क्या होगा, ये भक्तिलता बीज अपने आप उगते जाएगा। और ये लता किसी भौतिक चीज के ऊपर आधारित नहीं है, हम जिस स्थान में हैं उस स्थान के ऊपर आधारित नहीं है, लेकिन फिर भी इधर वर्णन किया गया कि भरत महाराज ने अपना सारा भौतिक जीवन त्याग किया, त्याग करके वो ऐसे जगह गया जगह भगवान नित्य रूप में वास करते हैं। तो ये जगह हमको ये प्राप्त, ये चीज प्राप्त होता है कि स्थाने स्थितम श्रुतिगताम तनुवान, आप जहां हो उधर स्थित रहो और भगवान का भजन करो। लेकिन एक जगह हम देखते हैं कि महान महान राजा लोगों ने क्या किया, इतना सारा भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करने के बाद भी वो लोग भी अपने सैक्रिफाइस वगैरह करते थे, सारा धार्मिक कार्यकलाप अनुष्ठान भगवान के भक्ति वगैरह करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने त्याग किया। तो ये दोनों के बीच में कैसे हम समझे कि एक जगह वर्णन किया जाता है कि भौतिक जीवन को त्याग करके जंगलों में जाके तपस्या करके भगवान का भजन किया है भरत महाराज जैसे लोग, दूसरी जगह वर्णन आता है कि किस प्रकार शास्त्रों में कि स्थान स्थितम, आप कोई भी भौतिक स्तर में कोई भी स्थिति में जाके भगवान का भजन कर सकते हो, आप जहां हो उधर स्थित रहो। इन दोनों में अंतर क्या है, ये बहुत जरूरी ये बात जानना कि जहां जहां इस बात को बताया गया है कि आप जहां हो स्थित रहो, उसका कोई भौतिक परिस्थिति का कोई मतलब ही नहीं, आप बस भगवान का भजन करो। जहां इस बात को बताया गया, ये बात को समझना चाहिए कि भगवान की भजन का शक्ति का या उनका महिमा का वर्णन हो रहा है। द ग्लोरी ऑफ चैंटिंग, हियरिंग इन चैंटिंग इज एक्सप्लेन्ड है। वो भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन भगवत कथा का श्रवण इतना शक्तिशाली है कि जहां भक्त लोग मिलके, चाहे कहीं भी हो, वो महल में हो या जंगल में हो या कहीं भी, जहां भक्त लोग मिलके भगवान का भजन करते हैं उधर भगवान साक्षात उपस्थित होते हैं, कोई और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां हो उधर स्थित रहो और भगवान का भजन करो। जैसे भगवान क्या बताते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि, जहां मेरे भक्त लोग मिलके गुणगान करते उधर मैं स्थित हूं, लेकिन स्वयं भगवान बताते हैं। तो अगर वैसा है, तो अगर कोई व्यक्ति घर में बैठ के अपना भजन साधन कर रहा है तो भगवान उधर स्थित है, तो उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा सोचते सोचते व्यक्ति सोचेगा कि मुझे मंदिर जाने की भी क्या जरूरत है, मैं तो घर में भजन कर रहा हूँ तो भगवान उधर स्थित है, क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं स्थान है स्थितम, तो मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। तो इस व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन ये गलत धारणा है। व्यक्ति को अपना जो भौतिक जो जीवन है उसको कभी ना कभी त्याग करने के लिए कभी ना विचार होना चाहिए, और हमेशा ये धामवास की लालसा हृदय में होना चाहिए। धामवास मतलब जहां जहां भगवान ने अपने निजी लीलाएं किया है और जहां भगवान साक्षात उपस्थित है, या आत्म विग्रह के रूप में या लीला कथा के रूप में। जैसे वृंदावन में हम देखते हैं कि बहुत सारे हर एक चीज या हर एक वृक्ष, हर एक घास का तिनका, हर एक दीवार, हर चीज हमको भगवान का स्वाभाविक तरीके से स्मरण दिलाता है। जैसे बॉम्बे में वास करते हैं तो ऐसा नहीं होता है, भले ही भगवान का भजन कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन एक विशेषता है वृंदावन में करने का, क्योंकि उधर स्वाभाविक तरीके से भगवान का भजन उधर होता है, बाय नेचुरली इट हैपेंस। तो ये दामवास का बहुत बड़ा महिमा है। टू डू थिंग, टू डू डिवोशनल सर्विस इन धाम गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो इसलिए हर भक्त को ये धामवास का लालसा मन में जरूर होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज गो टू धाम, रिसाइड इन दैट प्लेस, चैंट हरे कृष्ण मंत्र और भागवत कथा करना, ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए भरत महाराज ने क्या किया, वो अपना भक्ति बस फर्स्ट क्लास चल ही रहा था अपने भौतिक जीवन में, अपना राजत्व के जीवन में, लेकिन फिर भी उन्होंने त्याग कर दिया। किस प्रकार त्याग किया, मलवत, पांच में और कहीं आता है कि भरत महाराज ने मल को जिस प्रकार हम त्याग करने का फिर वापस नहीं देखते, तो उसी प्रकार उन्होंने अपना पूरा राज्य का जो जीवन है या राजा का जो जीवन है भौतिक जीवन है, उन्होंने इस प्रकार त्याग किया। तो ये जो शब्द है केवल भरत महाराज को इस्तेमाल किया गया है, तो खास करके वैराग्य, खास करके कोई भक्त को लिए ये ध्यान रखना चाहिए, भरत महादेव चरित्र में एक खासियत है। तो जहां जहां शास्त्रों में वर्णन किया गया है, बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस श्रवण कीर्तन करो। इसका मतलब क्या है कि ये श्रवण कीर्तन का महिमा का वर्णन चल रहा है, आपका श्रवण कीर्तन का महिमा नहीं, श्रवण कीर्तन का महिमा। तो हमारा श्रवण कीर्तन में और श्रवण कीर्तन में बहुत अंतर है। तो इसलिए हर व्यक्ति को स्थान चुनना बहुत आवश्यक है, वेयर एम आई हियरिंग एंड चैंटिंग। भले ही एक बहुत गंदे माहौल में भी व्यक्ति जप करेगा तो उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन हमारा योग्यता क्या है। तो जैसे हम देखते हैं कि गौर किशोरदास बाबा जी, वो सब लोग टॉयलेट में बैठ के भजन करते थे, तो हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू। सो वी हैव टू हैव द एटमॉस्फेयर, वो माहौल में जाके भजन करना बहुत जरूरी है। तो भरत महाराज ने उस माहौल को चुना, ही सिलेक्टेड दिस धाम। तो वैसे इससे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा ये मिलता है कि भले ही भक्त लोगों का या हमारा भजन साधन चल ही रहा है अपने घर में, लेकिन फिर भी मंदिर में आके भजन करना, मंदिर में आके भगवान का नाम कीर्तन करना, मंदिर में आके भक्तों के संग में बैठ के भागवत सुनना, इसका अलग ही विशेषता है। इसका फल बहुत अधिक गुणा भी होता है, ज्यादा, इट इज मेनी फोल्ड्स। तो इसलिए भले ही घर आपके नजदीक में है, कोई सोच सकता है हमारे घर में जपा हो रहा है, लेकिन फिर भी हर भक्त को प्रयास करना चाहिए कि मंदिर में आके जपा करें, मंदिर में आके भागवत सुने। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है प्रभु जी, हम तो अभी सीडी प्लेयर आ गया, कैसेट आ गया, हम लोग घर में बैठे सीडी टेप रिकॉर्डर लगा के हम सुन लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है, श्रवण तो हो ही रहा है। ठीक है, अगर ऐसा बोल रहे तो ठीक है, लेकिन भरत महाराज ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि मुझे जंगल जाना है और उधर मुझे भगवान का भजन करना चाहिए, ये सबसे पहला शिक्षा हमको प्राप्त होता है। अगर स्थान चुनना है तो कैसा स्थान चुनना चाहिए, वो बात इधर हमको प्राप्त होता है। तो सबसे पहला बात यह है कि उस स्थान को चुनना चाहिए जहां भगवान नित्य निवास करते हैं, वेयर द लॉर्ड इज एटर्नली रिसाइडिंग। भगवान नित्य रूप में, खास करके संसार में अपने स्वरूप में अच्छे विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकाशित करते हैं। तो हमको वो स्थान चुनना चाहिए जहां भगवान अच्छे विग्रह के रूप में अपने आप को स्थित करते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि a devotee is always fully surrendered to the loving service of the Lord, and the Lord is visible to the devotee according to devotee's desire. He may be present in the form of Lord Ram, Krishna, etc., etc. The devotees worship all these forms according to their liking, and the Lord, out of his affection, presents himself as Archa Vigraha. He sometimes presents himself personally before the devotee out of reciprocation of his. तो दो प्रकार भगवान इस संसार में प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। एक है उनके अच्छे विग्रह के रूप में, दूसरा है उनका नाम के रूप में। खास करके कलयुग में दो स्वरूपों में प्रकाशित करते हैं। तो श्री प्रभुपाद जी खास करके ये अच्छे विग्रह के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। भगवान के अच्छे विग्रह के समक्ष भगवान का भक्ति करना, भजन करना, इसका और ज्यादा मेनी फोल्ड बेनिफिट मिलता है, क्योंकि हमारा दृष्टि अभी तक इतना उच्च स्तर तक नहीं पहुंचा है जिसमें हम हर जगह भगवान को देख सकते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने एक दयालु रूप को स्वीकार करते हैं, वो है अर्च विग्रह का स्वरूप। तो खास करके इस श्लोक में भगवान के रूप का जो तत्व है, या अलग अलग रूप लेने के पीछे कारण है, अलग अलग रूपों के पीछे अलग अलग रूपों के पीछे जो फिलॉसफी है उसको वर्णन करते हैं। This is explained in shloka. बोला कि यत्र हावा भगवान हरिर अद्यापि तत्रायम निज जनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यता इच्छा रूपेण। तो ये छोटा सा लाइन में बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पावरफुल शब्द है। तो हम एक एक शब्द के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला शब्द है इधर भगवान हरि ही अद्यपि, इवन टुडे, प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इवन टुडे, तो ये बात बहुत गलत है, ये सोचना कि भगवान 5000 साल पहले आए कुछ करके चले गए, अरे हमारा इतना सौभाग्य नहीं है, भगवान जब पृष्ठ थे उस समय अगर होते तो हमारा उद्धार हो जाता। नहीं, इवन टुडे अगर आप वृंदावन जाएंगे आप कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5000 साल पहले इतिहास था वो खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी खत्म हो गया, ओनली स्टोरी इज रिमेनिंग, ओनली प्लेसेस आर रिमेनिंग। नो, इफ यू गो, इफ यू कैन सी, यू कैन सी। अगर आप देखना चाहते देख सकते हो। हम 5000 साल में जब कृष्ण आए, दुर्योधन भी भगवान का दर्शन किया, लेकिन कुछ फायदा हुआ? भगवान साक्षात उनके सामने उपस्थित होने के पर भी दुर्योधन देख नहीं पाया। तो वैसे ही अभी अगर कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करना चाहता है तो अभी भी वृंदावन जाके दर्शन कर सकता है, ही कैन डू इट। लेकिन हमारा अज्ञान के कारण, हमारे आंखों के सामने माया का पर्दा के होने के कारण हम भगवान को दर्शन नहीं कर सकते। इवन टुडे अद्यपि तत्र तत् दूसरा है, दूसरा शब्द है इसमें निज जनानाम वात्सल्येन, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है इसके इस लाइन में। निज जनानाम, इधर भक्तों का संबोधन इस श्लोक में किया गया है कि निज जनानाम करके किया गया है। वैसे ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, सारे जीव भगवान के अंश है, सारे जीव भगवान के निजी अंश है, लेकिन फिर भी इधर भक्तों के लिए खास करके बताया गया है कि निज जनानाम, मतलब भगवान के लिए विशेष प्रिय है भक्त लोग। He is taking care of everybody. सारे जितने भी जीव है सब लोगों को भगवान देखभाल कर रहे हैं, सबको हवा पानी दे रहे हैं, सबको खाना दे रहे हैं, और जो भी इच्छा है उन सारे इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। जैसे उपनिषदों में वर्णन किया गया है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको भुवनाम यो विदधाति कामान, सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान, ही सैटिस्फाइंग द डिजायर्स ऑफ एवरीबॉडी। तो सब भगवान की नजरों में सब समान है, लेकिन फिर भी ये जो भक्त है उनके लिए खास प्रिय है। जैसे राजा की दृष्टिकोण में सारे प्रजा, सभी प्रजा एक ही है, उनका पुत्र भी उनका ही प्रजा है, उनकी पत्नी भी उनकी प्रजा है, सबको समान दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन फिर भी राजा का पुत्र पुत्र होता है, राजा का पत्नी पत्नी होती है, जो राजा के महल में जो नौकर चाकर होते हैं वो उनके खास होते हैं। भले ही सभी प्रजा है लेकिन उन प्रजाओं में राजा के सानिध्य में जो सेवा करते हैं उनके उनके निजी संबंधी है और राजा के लिए अधिक प्रिय होते हैं। भले ही राजा के लिए सारा राज्य एक ही है उनको देखभाल करते, लेकिन फिर भी उनका जो महल है उनके लिए वो खास है। तो वैसे भले ही भगवान के लिए सारा जगत एक ही बराबर है, सभी कुछ भगवान से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो निजी धाम है उनका जो निजी धाम है वृंदावन, वो उनके लिए और प्रिय है, इट इज समथिंग स्पेशल। वो राजा क्या करते हैं, अपना जो निजी जन है उनको जो देखभाल करते हैं, राजा का सेवा करते हैं, वो पर्सनली जाके अटेंड करते हैं, उनको पूछताछ करते हैं सब ठीक है कि नहीं, उनको देखभाल पर्सनली करते हैं। लेकिन बाकी सब जो जगत है, बाकी सब लोग, राजा उनको क्या करते हैं, उनको देखभाल कैसे करते हैं, उनका प्रतिनिधि के द्वारा करते हैं। तो वैसे ही ये जो भगवान भक्तों को स्वयं डायरेक्टली देखभाल करते हैं, और बाकी सब लोगों को जो भौतिकवादी लोग हैं भगवान देखभाल करते हैं लेकिन स्वयं देखभाल नहीं करते। कैसे देखभाल करते हैं, महामाया के द्वारा देखभाल करते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ देम थ्रू दुर्गा देवी बाय द एजेंसी ऑफ हिज मटेरियल एनर्जी। तो यही है, इसलिए इधर बोला गया है कि निज जनानाम, निज जनानाम क्यों बोला गया, क्योंकि वो स्वयं भगवान आके भक्तों का देखभाल करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब एक ब्राह्मण भगवद गीता का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि भगवान ने इधर लिखा है भगवद गीता में कहा कि योगक्षेम वहामि हम, ये श्लोक आता है, श्लोक अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, इसलिए वो ये जना कौन है, वो लोग निज जनानाम तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। तब ये ब्राह्मण ने देखा, अरे भगवान तो नित्य लीला में रत है, इतने महान है भगवान, वो योगक्षेमं वहामि अहम क्यों लिखा है, वहामि अहम्, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक में, जहां बताया गया है कि मैं स्वयं आके भक्तों को देखभाल करता हूँ, उनका योग और क्षेम को। तो उनके ऊपर थोड़ा डाउट आया, तो उन्होंने क्या किया, लाल पेन से उन्होंने एक मार्क कर दिया। तब भगवान सोचने लगे, अरे ऐसा कुछ डाउट आ रहा है मेरे भक्तों में। ठीक है, तो ये ब्राह्मण इतने गरीब थे कि रोज भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो एक दिन गए, जिस दिन उन्होंने लाल पेन से मारा था उस दिन कहीं भिक्षा मिला नहीं है। तो रोज सोच रहे थे ब्राह्मण कि भगवान जो है वो स्वयं आके मुझे भिक्षा नहीं देते, वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, वो उनको प्रेरणा देते ताकि उनके द्वारा मुझे भिक्षा मिल जाए। तो आज वो भिक्षा मांगने के लिए गए तो मिला ही नहीं। तो वो सोचने लगे, अरे क्या हो गया। तो उसी समय क्या हो रहा था, दो छोटे से बालक, एक काला और गोरा, बहुत सुंदर से बालक, बहुत सारा खाने खाद्य सामग्री सब कुछ लेके आए, लेकिन घर का दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नी ने खोला, तो उन्होंने देखा कि सुंदर से बालक इतना बड़ा बोझ उठा के लेके आ रहा है। तो पत्नी ने बोला, बैठो शांति से। तो उनको बिठाया और काला बनाने के लिए गई अंदर और बोले कि मैं गोरस के आती हूँ। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों बालकों के पीठ के पीछे बहुत सारा मारा हुआ, जो लाठी से मारा हुआ जो निशानी है, लाल लाल मार्क्स है। तो उनकी ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि बच्चों, अरे कौन है ये, इतना जोर से मारा, इतना सुंदर बालक हो, कितना कठोर हृदय वाला होगा। तो बताया में ये हमारे गुरु जी ने भेजा है, हम उठा के लेके जा रहे थे सब सामान, लेकिन हम तो छोटे बच्चे हैं, इतना सारा भार कैसे उठा सकते। तो धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन फिर भी ये हमारे जो गुरु है उन्होंने हमको जोर से मार मार के हमको भेजा इधर। तो उसने बोला कि कौन है आपका गुरु। तो ये दोनों बच्चे ने बोला कि असलियत में आपका जो पति है वही हमारा गुरु है। तो पति को बहुत गुस्सा है, बोला कि आने दो तुम्हारे गुरु को, मैं उनको सबक सिखा दी, इतना सुंदर बच्चों को मारता है, इतना कठोर हृदय वाला हो गया। तो बच्चों को बिठाए, बोला कि मैं आपको आपके लिए अच्छा रसोई बनाती हूँ। तो बेटा की चली गई, कुछ समय के बाद दरवाजा खटखटाया, तो वो ब्राह्मण आया। तो उनकी पत्नी दरवाजा खोलते उनको डांटना शुरू कर दिया कि आपको शर्म नहीं आता। तो बेचारे ब्राह्मण एकदम परेशान हो गया, अरे आज तो मैं इतना भिक्षा मांगने के लिए गया, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाता था, लेकिन आज तो कुछ मिला नहीं। और वापस जब मैं घर आता हूँ तो फिर पत्नी भी डांटना शुरू कर दिया, क्या हो गया। तो पति पूछता है क्या हो गया, कि आपने इतना दो सुंदर बालकों को इतना मारा, आपका हृदय है कि ये पत्थर है। तो डांटने लगे, तब इनको समझ में नहीं आता था, उन्होंने बोला क्या है। तो देखिए अब दो लड़के, दो लड़के तो फिर गायब हो गए। तब वो ब्राह्मण जाके देखता है तो उधर अस्तित्व में वो जो उन्होंने लाल पेन से उसके ऊपर मारा था, क्या मारा था, लाइन किया था, योगक्षेम हम यह, वो भी मिट गया है। तब उनको समझ में आता है अस्तित्व में वो दो लड़के जो आए थे अस्तित्व में कौन थे, कृष्ण और बलराम, वो स्वयं वो भक्तों की सेवा करने के लिए आए। इसलिए इधर इस्तेमाल किया गया कौन सा शब्द है, वो निज जनानाम, क्योंकि भगवान निज जनानाम उतनी स्वयं भक्तों का देखभाल करते हैं, ही पर्सनली टेक्स केयर ऑफ देम। उसका उदाहरण क्या है, राजा और राजा के महल में जो काम करने वाले उनके संबंधी और बाकी सब प्रजा। राजा का पुत्र भी प्रजा ही है, लेकिन फिर भी पुत्र पुत्र होता है, ये बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो निज जनानाम वात्सल्येन सन्निधाप्यते इच्छा रूपेण, वात्सल्येन, वात्सल्येन मतलब उनकी जो निज जन है, उनके भक्त है, भगवान की जो भक्त है उनके प्रति जो वात्सल्य है, वात्सल्य मतलब प्रेम लेना चाहिए इधर शब्द, बिकॉज ऑफ द लव फॉर हिज डिवोटीज। क्या करते भगवान, सन्निधाप्य बिकम विजिबल, वो दिखाई पड़ते, कैसे दिखाई पड़ते हैं, इच्छा रूपेण, यानी जिस प्रकार भक्त इच्छा करते हैं उसी प्रकार भगवान अपना स्वरूप बदली करते हैं। तो इधर एक बहुत गहरा सिद्धांत है, अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है हु इज कृष्णा, बहुत सारे लोग अलग अलग जवाब देंगे, कृष्ण जो है सृष्टि करता है, कृष्ण भगवान है, बहुत सारे जवाब उनको प्राप्त होता है। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार हु इज कृष्ण, कृष्ण कौन है, रूप गोस्वामी पाद के अनुसार भक्ति सामने सिंधु के अनुसार कृष्ण कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? कृष्ण अकेला रसामृतम मूर्ति. दिस इज द इंट्रोडक्शन. दिस इज हाउ कृष्ण इज इंट्रोड्यूस्ड इन भक्ति रसामृत सिंधु. अकेला रसा अमृतम मूर्ति, ये शब्द को भक्त लोग कभी भूलना नहीं चाहिए. वन शुड नेवर फॉरगेट दिस वन लाइन. अकेला रसा अमृतम मूर्ति श्री कृष्ण. हाँ, हु इज कृष्ण? अकेला रसा अमृतम मूर्ति. अकेला मतलब क्या है? सारे. रसा मतलब क्या है? रिलेशनशिप, यानी उनके बीच में जो संबंध है, भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है. अकेला रसा, सारे जितने भी संबंध है, सारे जितने भी इस संसार में रस है. मूर्ति मतलब मूर्तिमान स्वरूप है. कृष्ण कौन है? He is a personification of all relationships. इस संसार में हम पांच प्रकार के रस को हम देखते हैं. क्या है वो? शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य. ये बहुत गहरा सिद्धांत है. श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में इसका इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रस तत्व को बता देते हैं. कुछ तो बोलते हैं कि नहीं नहीं भगवत गीता इस फिलॉसफी और रस तत्व कहीं और है. नहीं, श्रील प्रभुपाद इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ ही टॉक्स अबाउट रस तत्व. तो ये पांच प्रकार के रस है, शांत, दास, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य. और श्री कृष्ण कौन है? ये पांच रसों को अगर एक स्वरूप दिया जाए वो श्री कृष्ण. इफ यू गिव ए फॉर्म टू फाइव रसस देन ही इज श्री कृष्ण. इफ यू गिव द फॉर्म टू द रिलेशनशिप्स, द अबोड ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स, देन ही इज कृष्ण. तो इसलिए बोला गया है कि अकेला रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण. श्री कृष्ण इज द. तो अलग अलग भक्तों के साथ उनका अलग अलग प्रकार का संबंध है. ऐसा नहीं कि कृष्ण एक बैठे सारे भक्त एक ही उनके लिए. नहीं, कृष्ण की नजरों में हर एक भक्त उनके लिए उनकी नजरों में खास है. एवरी डिवोटी स्पेशल इन द आईज ऑफ कृष्ण. हर एक भक्त के साथ, हर एक जीव के साथ भगवान का एक विशेष संबंध है. क्योंकि कृष्ण अनंत है, उनके अनंत भक्त है. अनंत भक्तों के साथ उनका अलग ही प्रकार का संबंध है. हम देखते हैं कि भागवत में इतने सारे भक्त है का वर्णन चल रहा है. हर एक भक्त एक यूनिक है, स्पेशल. क्यों स्पेशल है? क्योंकि कृष्ण के नजरों में वो विशेष है. जो कृष्ण एक भक्त के साथ, उनके साथ जो आदान प्रदान है, उसी प्रकार का आदान प्रदान कोई और भक्त के साथ नहीं करेगा. इसलिए भक्तों को ध्यान में रखना चाहिए कि भले ही भक्ति के साधन प्रणाली सबके लिए एक ही है, फिर भी उसके अंतर्गत भी एक एक भक्त का अलग अलग प्रकार का भगवान के साथ संबंध है. तो हमारे जो नजरों में दिखाई पड़ता है इतना बॉक्स में, अगर ये बॉक्स में ये भक्त फिट नहीं होता है तो ये भक्त नहीं है, नहीं सोचना चाहिए. यू कैनॉट मेक ए स्मॉल बॉक्स एंड देन से दिस इज कॉल्ड डिवोशन, दिस इज कॉल्ड डिवोशनल सर्विस, आई विल पुट दिस डिवोटी इन दिस, इफ ही डजंट फिट ही इज नॉट डिवोटी. नहीं, एक एक कैरेक्टर. एवरीबॉडी इज यूनिक कैरेक्टर. सो कृष्णा इज फुल ऑफ वैरायटी. So he has got variety of devotees. ये गजेंद्र है, ये गरुड है, और एक हनुमान है. you cannot say. और दोनों का भी झगड़ा भी करते हैं. गरुड में और हनुमान में कंपटीशन होता है. तो फॉर कृष्णा दिस इज ऑल ग्रेट लीला. तो यू cannot say एक सबको एक ही यूनिफॉर्म नहीं बना सकते. जस्ट इतना होना चाहिए, इतना ही बस. इसमें जो फिट होता है वो भक्त है, इसमें जो फिट होता है भक्त नहीं है. कृष्ण ऐसा नहीं करते. फॉर कृष्ण एवरीबॉडी इज ए यूनिक पर्सन, एवरी डिवोटी इज यूनिक पर्सन. तो हर एक भक्त के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ कृष्ण का एक विशेष संबंध है. तो विशेष संबंध है तो विशेष रस का आदान प्रदान है, विशेष भावना है. तो भावना के अनुसार उनका विशेष स्वरूप है. तो भगवान का अलग अलग स्वरूप क्यों है? Why there are different forms of Krishna? जैसे इस श्लोक में बताया गया है और ब्रह्म संहिता में बताया गया, अद्वैतमच्युतम् अनादिमनंतरूपम्, अनादिम अनंतरूपम्. Why Krishna has got many forms? क्यों ऐसा एक ही रूप में क्यों नहीं है? क्योंकि अनंत भक्त. अनंत भक्त होने के नाते ये अनंत भक्त लोग अनंत प्रकार का इच्छा रखते. तो अनंत प्रकार की इच्छाओं के अनुसार उन अनंत भगवान क्या करते हैं? अनंत स्वरूपों को प्रकाशित करते हैं. कृष्ण हैज एज मेनी डिवोटीज आर देयर, एज मेनी जीवस आर देयर, एज मेनी फॉर्म्स ही कैन हैव. इवन टू वन जीवा ही कैन हैव अनलिमिटेड फॉर्म्स. एक ही भक्त को अनंत रूप प्रकाशित करते हैं. दैट इज द अनलिमिटेडनेस ऑफ कृष्ण. हम बोलते हैं कि कृष्ण अनंत है, लेकिन कितना अनंत है, कितना महान है, वो जानना बहुत जरूरी है. कि इनका अनंत स्वरूप इसलिए है क्योंकि अनंत भक्त है, और एक एक भक्त को उन्हीं स्वरूप में अनंत प्रकार की भावनाओं को प्रकाशित करते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप्स एंड रस। तो इधर रामादि मूर्ति शिखला नियमेन तिष्ठन, ये श्लोक श्री प्रभुपाद जी बोल करते बोलते हैं कि भले ही कृष्ण के अनंत रूप है, जैसे राम आदि मतलब राम नरसिंह वामना इतने अनंत रूप होने पर भी कला नियमेन तिष्ठन, ये कौन है, सब कृष्ण की कला, ये देचम सकलत पुंसाम कृष्णस्तु भगवान से हम। इस बात को इस ब्रह्म संहिता में बताया गया किस प्रकार बाकी सब जितने भी राम कृष्ण राम नरसिंह वामना ये सब जितने भी रूप है वो सब कृष्ण कृष्ण के अंश है और या कला है। अंश का मतलब क्या है, कृष्ण के विस्तार, कला का मतलब क्या है, विस्तार के विस्तार, द डेफिनेशन ऑफ कला इज द एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन, अंश मीन्स द फर्स्ट एक्सपेंशन। तो नानावतार अकरोत् गुणेश किंतु किंतु फिर भी लेकिन कृष्ण स्वयं समवत् परम प्रमान्यो गोविंद मान पुरुषम तवम जामि। तो इस श्लोक में बताया गया है कि इच्छा रूपेण जिस प्रकार भक्त इच्छा करता है भगवान इस प्रकार का रूप दर्शा प्रकाशित करते हैं। तो ये एक विशेष संबंध है भक्त और भगवान के बीच में। हम इस संसार में भी देखते हैं कभी कभी ये पिताजी बच्चे से इतना प्रेम करते हैं, बच्चा बोलता है मुझे घोड़े पे चढ़ना है, अभी पिताजी घोड़ा कहाँ से लेके आए, पिताजी बोलते मैं घोड़ा बन जाता हूँ, तो उतना रूप बदली कर दिया। So, according to the desire of the child, the father is changing the form. है कि नहीं? तो अभी पत्नी है, क्योंकि वो पति से इतना प्रेम करती है, पति से पूछती है, आज मैं कौन सा साड़ी पहनूं? है कि नहीं? So they ask, why they ask, कौन सा रूप में? क्योंकि जिस प्रकार उनके प्रिय इच्छा करता, उस इच्छा के अनुसार अपना रूप को प्रकाशित करना चाहते हैं। One wants to show that form in which the other person likes you to see. जिस प्रकार दूसरा व्यक्ति चाहता है कि वो मैं दिखाऊं, उस प्रकार देखना चाहता। तो ये जो साइकोलॉजी है वो भगवान में भी है, इस भौतिक संसार में भी ऐसा ही है। तो इस संसार में लोग अलग अलग प्रकार के ड्रेस क्यों पहनते हैं, वो इसलिए नहीं पहनते क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है, नहीं दूसरों को अच्छा लगता है ये ड्रेस पहनने से, है कि नहीं? इट इज ट्रू। Why somebody is wearing jeans pant? उसको इतना गर्मी हो रहा है, सब कुछ गर्मी के मौसम में पहन रहा है, क्यों पहन रहा है? असल में उसको बहुत अनकंफर्टेबल चीज है, क्यों? क्योंकि ये पहनने से दूसरों की नजरों में वो अच्छा दिखाई पड़ता है, असल में वो बंदर जैसा भी दिखे उसके लिए, लेकिन फिर भी दूसरों को अगर ये अच्छा लगता है, कितना भी प्रकार की मुश्किल की चीज क्यों ना हो, ही इज विलिंग। तो आजकल हम देखते हैं कि कुछ नौजवान युवतियां वो इतना मोटा हाई हील्स पहन के जाते हैं, देव इट इज हाई सो अनकंफर्टेबल, गिर जाते हैं, वो पूरा पैर टूट जाता है ना, वो उनके लिए कोई कंफर्टेबल चीज नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों की नजर में वो उस प्रकार दिखना चाहते हैं, उसलिए दे वेयर दिस। तो ये सेम साइकोलॉजी कृष्ण इज ऑल्सो गॉट, सो ही वॉन्ट्स टू शो द फॉर्म विच द डिवोटीज वॉन्ट टू सी। इसलिए यही श्लोक आधारित होके रुद्र गीत में शिव जी भी इसी बात को बताते हैं कि दर्शनम नो ददृक्षूणाम देही भागवत आर्चितम रूपम प्रियतम स्वानम सर्वेंद्रिय गुणांजनम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है रुद्र गीत में, वेरी ब्यूटिफुल। कृष्ण शिव जी एक ही है जो भगवान के जो ये चार रूप है संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध वासुदेव, इनका तत्व के रूप में विश्लेषण करते हुए वर्णन करते हैं। मैंने रुद्र गीत को चर्चा किया था ये उस समय, ये श्लोक के ऊपर रोहचन का मारे आया था, मेरा ही टर्न आया था। तो उस समय में वी आर डिस्कसिंग अबाउट दर्शनम नो दुदृक्षु नाम, लॉर्ड शिव से दर्शनम नो, भगवान दर्शन देते, कैसे दर्शन देते, दुदृक्षु नाम देही भागवत अर्चितम, भागवत मतलब भक्त लोग, अर्चितम जो भक्त लोग जिस रूप को पूजा करते हैं, जो जिस रूप को दर्शन करना चाहते हैं उसी रूप में भगवान प्रकाशित करते। हम देखते हैं कि अभी जगन्नाथ जी का विग्रह देख रहे हैं, जगन्नाथ जी का ये स्वरूप अस्तित्व में कहां से आया, हम देखते हैं द्वारका की लीला में जैसे भगवान उनकी प्रिय भक्तों का लीला का श्रवण करने लगे, ऐश्वर्य में स्थित भगवान, हाँ कौन है, द्वारकाधीश, जब उनकी वृंदावन के माधुरी भक्तों का स्मरण आया तो क्या हुआ, उनके अंदर सारे जितने भी अष्ट साधु विकार उत्पन्न हो गए, महाभाव प्रकाश उत्पन्न हुआ। जैसे महाभाव प्रकाश उत्पन्न हुआ, भगवान कृष्ण बलदेव और सुभद्रा के अंदर सारे हाथ अंदर चले गए और आंख बड़े हो गए। तब नारद मुनि ने देखा, देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत उन्होंने प्रणाम करके भगवान से प्रार्थना किया, ये रूप इतना अद्भुत सा रूप है, मैं चाहता हूं कि ये रूप हम मेरे हृदय में हमेशा प्रकाशित रहे, और दूसरी बात ये रूप में आप लोगों को कल्याण करने के लिए इस रूप में कलयुग में प्रकाशित हो, कलयुग में आइए। तब भगवान ने बताया मैं जरूर आऊंगा, और ये जो स्वरूप है तुम्हारे नित्य, तुमको इस स्वरूप में नित्य दर्शन दूंगा, और साथ साथ में इसी स्वरूप में सारे लोगों को मैं दर्शन दूंगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय। तो भक्तों की इच्छा के अनुसार के ऊपर आधारित होकर भगवान अलग अलग स्वरूपों को प्रकाशित करते हैं। तो ये सबसे पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण है उडुपी के अर्चविग्रह श्री कृष्ण, उनका भी वैसा ही है। तो रुक्मिणी यशोदा सब लोग, रुक्मिणी सत्यवामा सभी लोग जितने भी द्वारका के पटरानी आए, वो सब पैसे की भगवान की सेवा करते थे, उनको प्रिय थे। देख दिन जैसे रुक्मिणी ने कृष्ण की बाल लीलाओं को श्रवण किया, तुरंत उनके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुआ कि मैं तो श्रवण तो किया लेकिन भगवान या मेरी पति जो है बचपन में कैसे दिखते थे, उनके अंदर इच्छा हुआ। और पत्नी के अंदर बहुत सारी इच्छा होता है, लेकिन ये तो विचित्र इच्छा है, मेरे पति बचपन में क्या करते थे, बचपन में कैसे दिखाई पड़ते थे। तो रुक्मिणी के अंदर ऐसा इच्छा हुआ कि और कृष्ण से पूछिए मैं आपका ये जो बाल स्वरूप है वो देखना चाहती हूँ। तो कृष्ण ने बोला रे तो ये तो अब तो हमारे बीच में तो माधुरी का संबंध है, तो आप बाल स्वरूप को क्यों देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, मैं सुना है कि आप बचपन में और सुंदर थे। तो कृष्ण ने बोला ठीक है मैं दिखा देता हूँ। तो तुरंत कृष्ण ने द्वारका में उनका जो बाल स्वरूप है वो उन्होंने प्रकाशित किया। जैसे कृष्ण ने उनका बाल स्वरूप प्रकाशित किया तो ये रुक्मिणी बोलने लगी अरे ये तो बहुत सुंदर है आप ऐसे ही रह जाओ। तो कृष्ण बोला मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ, लेकिन आपके लिए एक विग्रह प्रदान कर सकता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, उनका ही जो स्वरूप है वो विग्रह के रूप में परिणित करके भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को प्रदान किया। तो रुक्मिणी उनको रोज पूजा करती थी। अभी सोचा कि अभी बाकी 16,107 लोग हैं वो उनको देखभाल करेंगे, मैं उनको ये रूप में देखभाल करूंगी। आई विल टेक केयर ऑफ दिस फार्म नाउ। तो रुक्मिणी स्टार्ट वर्शिपिंग दैट फार्म। तो वही जो विग्रह है, तो अस्तित्व में ऐसा बोला जाता है कि ये विग्रह के दो स्वरूप थे, एक है रुक्मिणी को दिया था और रोहिणी को भी दिया था, इसलिए ये दोनों विग्रह बाद में श्री कृष्ण फिर धाम वापस जाने के बाद ये दुवंश सब नष्ट हो गया, ये विग्रह कहीं मिट्टी में मिल गया, वो जो है गोपी तालाब में गोपी चंदन के अंदर फंस गया था। तो यही जो विग्रह है अभी उडुपी और गुरुवायूर में स्थित है। द डेटीज इन उडुपी एंड गुरुवायूर आर नथिंग बट कृष्णस फार्म्स इन द्वारका वेयर कृष्ण शोड, कृष्ण ने स्वयं अपना बाल स्वरूप दिखाया था। तो ये भक्तों की इच्छा के अनुसार वो कुछ भी करने के लिए तैयार, इवन अगर भले ही वो रस के अनुसार भी नहीं है, देखा जाए कृष्ण और रुक्मिणी के बीच में किसका रस है, माधुरी का रस है, लेकिन उनके सामने क्या प्रकाशित किया, क्योंकि रुक्मिणी ने इच्छा किया था कि मैं आपका द्वाल स्वरूप देखना चाहती हूँ, तो भगवान ठीक है इतना बड़ा राजा होने के पर भी कुछ भी हो पत्नी के वश में आके उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये छोड़ दे। तो वैसे ही हम देखते हैं कि वॉट एवर कृष्ण डस इट इज ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ डिवोटीज। कृष्ण जो भी कार्य करते हैं अपने भक्तों की संतुष्टि के लिए करते हैं। भक्त तो है, भक्त का निजी जीवन पूरा भगवान को समर्पित होकर भगवान की संतुष्टि के लिए सारे कार्य भक्त करते हैं, लेकिन उससे अच्छा भगवान भक्तों की संतुष्टि के लिए सारा कार्य करते हैं। जब भगवान स्वयं भक्तों की संतुष्टि के लिए सारा कार्य करने के लिए तैयार है तो हमारे क्या कहना, तो भक्तों की संतुष्टि के लिए हमको भी कुछ करने हैं, सारे कार्य उन्हीं के लिए करना चाहिए। Krishna himself is willing to serve devotees or show the form according to which the devotee is going. तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि इस श्लोक में ये इच्छा रूपेण सन्निधाप्य इच्छा रूपेण वात्सल्येण निज जनानाम, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। All these words are very important in this shloka. Any questions? Hare Krishna.
जब शिव जी ने जब कृष्ण का जब मोहिनी रूप देखने का इच्छा प्रकट किया तो भगवान कृष्ण ने जो मोहिनी रूप दिखाया तो शिव जी का मोहिनी रूप आराधना है।
ये जो दो रूप है जिसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, एक है नित्य जैसे अर्थ विग्रह के रूप में, दूसरा है टेम्पररी जैसे नरसिंह भगवान टेम्पररी समय के लिए आए चले गए। जैसे मोहिनी का रूप है दैट इज नॉट अर्चा, दैट इज नॉट वर्शिपेबल फॉर्म, दैट इज नॉट अर्चा फॉर्म लॉर्ड। वो एक रूप है शिवजी प्रदान, शिवजी चाहते थे कि मोहिनी का रूप देखिए, भगवान ने बोला नहीं भाई ये संभाल नहीं पाएगा इस रूप को, लेकिन फिर शिवजी बोला नहीं नहीं फिर भी चाहिए, तो भगवान ने प्रकाशित कर दिया एक मोहिनी का रूप दिखाया, तो शिवजी का हालत खराब हो गया तो भागने लगे मोहिनी के पीछे। तो मेनी मेनी प्लेसेस अस्तित्व में हर एक लीला में यही चीज होता है, भक्त के इच्छा के अनुसार भगवान अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। केवल भक्ति क्या, इवन भौतिकवादी, भौतिकवादी चाहते हैं कि मैं भगवान को निराकार रूप में देखना है, उनके लिए एक निराकार दर्शन भी प्रदान कर देते हैं। धाम राम प्रपद्यन्ते तामसते भजाम मम आत्मान रक्षन्ति मनुष्याः सब शान। सो व्हाट आर द डिवोटीज, डिवोटीज के कोई भौतिकवादी, भौतिकवादी चाहता है कि नहीं नहीं मैं भगवान को एक शक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ, तो शक्ति के रूप में उनको बता देते। लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली फॉर द डिवोटीज, व्हाट आर द डिवोटीज डिजायर टू सी मोर विचर फॉर्म, कृष्णा अपीयर्स इन दैट फॉर्म एंड ही शोज इन दैट फॉर्म। हर एक अर्च वगैरह का जो स्वयं व्यक्त है, जो भी इतिहास है जिनका कोई पुराणिक इतिहास है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कहानी, यू नेम इट, और वेंकट भट्ट और इसके बीच में श्री चैतन्य महाप्रभु का चर्चा में भी, मुरारी गुप्त श्री चैतन्य महाप्रभु का चर्चा में, मुरारी गुप्त को श्री चैतन्य महाप्रभु बताया कि बस आप अभी कृष्ण का नाम जप करो, कृष्ण का स्मरण करो। लेकिन मुरारी कृष्ण का नाम जप करना शुरू करते तो क्या हुआ, उनके मन में राम का स्मरण आया, तो वो बोल रहे कि मैं जानता हूँ कृष्ण जो है राम का स्रोत है, लेकिन फिर भी, लेकिन मैं जब जप करना अपना शुरू कृष्ण का नाम, लेकिन फिर भी राम नजर आता। तब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम अस्तित्व में हनुमान क्या होता, क्योंकि तुम मुझे राम के रूप में देखना चाहते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे सामने राम के रूप में ही रह जाऊंगा, इसलिए राम का नाम जप करो करके उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी। तो वैसे जब दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट के पास गए थे, यानी स्टेड इन श्रीरंगम फोर मंथ्स, तब उस समय वेंकट भट्ट के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक किए श्री चैतन्य महाप्रभु, तो चीजें तरह उठाते, देखो तुम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी जो है बहुत उनका चेस्ट लेडी पतिव्रता है, सारे पतिव्रता में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी को माना जाता है, लेकिन फिर भी आपकी जो लक्ष्मी है वो कृष्ण को देखने के लिए लालायित है, तो आपका नारायण का छोटे कृष्ण के पास आ जाती है। तो वेंकट भट्ट को थोड़ा सा वेंकट भट्ट सब कुछ मानने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी सब एक ही है, सब एक ही है बोल रहे थे वेंकट भट्ट, ये इतना मानने के लिए तैयार नहीं, नहीं नहीं आपका नारायण को त्याग करके लक्ष्मी कृष्ण के पास आ गए, हमारे कृष्ण के पास आ गए। लेकिन आने के बाद भी उनको एंट्री नहीं मिला, तब वेंकट भट्ट खराब नहीं, नहीं अभी मैं हार गया, अभी आप तो भगवान है, आप सब कुछ जानते हैं। तब वेंकट भट्ट को समझाते हैं लक्ष्मी को ये रासलीला में प्रवेश क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि इनके अंदर अहंकार है, मैं लक्ष्मी, मैं क्यों गोपियों के पश्चिम में क्यों चलूंगी, मैं तपस्या करके कृष्ण को प्राप्त करूंगी, तभी भी तपस्या कर रही बेलवन में, बेलवन में भी कृष्ण को प्राप्त नहीं हो रहा, क्यों गोपियों के पश्चिम में चलने के लिए तैयार। तो अगर आपको कृष्ण का दर्शन करना है तो वो कृष्ण जो माधुर्य स्वरूप जो कृष्ण है उनके भक्तों की पच्चिन्नों में चलने से उस प्रकार का इच्छा उत्पन्न होगा, वो तब हमारे हमको कृष्ण उस प्रकार दर्शन प्रदान करेंगे। सो यू हैव टू डेवलप दैट पर्टिकुलर डिजायर टू सी द लॉर्ड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, वैसे जाके हाँ मैं देखूंगा नहीं हो पाएगा, सो दैट डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार सब भक्तों के अंदर वो इच्छा को उत्पन्न करना चाहिए, दैट डिजायर टू सी द लॉर्ड, आई वॉन्ट टू सी। in the Lord in this form, unlimited form. तो इसमें और एक लास्ट बात बता के समाप्त करेंगे कि ये रूप ही मुख्य कारण है विरह को सर्वश्रेष्ठ के लिए. बिकॉज जब भगवान और भक्त के बीच में विरह की भावना उत्पन्न होता है तो उस समय भगवान के अनंत स्वरूप एक ही समय दिखाई पड़ते हैं और भगवान सामने उपस्थित है तो क्या होता है, वो एक ही स्वरूप का दर्शन चल रहा है. बट व्हेन द लॉर्ड इज नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, इसका मतलब है कि थोड़ा विरह की अनुभूति हो रहा है. तो समय क्या है उनका, क्या कर रहे होंगे, क्या हो, अलग अलग जो स्वरूप है एक ही समय धम प्रकाशित होता है. जैसे माँ बच्चा के घर में है, माँ अपना रसोई पका रही है, ठीक है, बच्चे को देख रही है, ठीक है, एक ही जैसा है, खेल रहा है. देखिए बच्चा स्कूल जाता है, कहीं और चले जाता है तो स्कूल में क्या कर रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, खा रहा होगा कि नहीं, तो अलग अलग रूप जो है चित्र एक ही साथ मन में उत्पन्न होता है. सो दिस इज द थियरी अबाउट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड.
एक समय के लिए कुछ कारक के प्रकार दीजिए.
It is not for our children.